यशाया अध्याय 53। जब मनुष्यों ने अध्याय और पदों का निर्धारण किया था तब उनमें एक भूल हो गई थी। परमेश्वर का वचन परमेश्वर से प्रेरित है, अतः उसमें तो भूल हो ही नहीं सकती। परंतु मनुष्यों ने हमारी सुविधा हेतु कि हमें धर्मशास्त्र के अंश खोजने में सुविधा हो और हम पदों को आसानी से कंठस्थ कर पाए, धर्मशास्त्र को अध्यायों और पदों में विभाजित कर दिया है। और निश्चय ही ये धर्मशास्त्र को खोजने का एक सुलभ तरीका है, परंतु इससे ये हुआ कि विभाजन अनेक स्थानों पर अनुचित हो गया। हमारा पढ़ने का स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम किसी अध्याय का उसके अंत तक पढ़कर अगले अध्याय को दूसरे दिन के लिए रख देते हैं। बाइबल के अध्यायों के विभाजन में इस बात पर ध्यान न देते हुए कि विचार अभी समाप्त नहीं हुआ है, अध्याय को समाप्त कर दिया गया है। यहां भी देखने को मिला है कि अध्याय 52 वास्तव में पद 12 पर समाप्त होता है और ये पद अध्याय 53 के विचार से सुसंगत है। अतः हमारा अध्याय 53 का अध्ययन हम अध्याय 52 पद 13 से आरंभ करेंगे। यहां परमेश्वर अपने उस दास की भविष्यवाणी कर रहा है जो आने वाला है, उसका एकलौता पुत्र। फिलिपियों अध्याय 2 पद 6-8, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। यही कारण था कि यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 6:38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। गेतसमनी की बाग में उसने कहा था, लूका अध्याय 22:42, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। वो अपने पिता के अधीन सेवक की नाई बना। यहां यशिया ने परमेश्वर के उस आने वाले सेवक के बारे में कहा था, यशाया अध्याय 53:13, देखो मेरा दास बुद्धि के काम करेगा, वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। ऊंचा का जो मूल शब्द इब्रानी भाषा में है उसका अर्थ है उठाया जाना। ये वही शब्द है जिसका प्रयोग यीशु ने उस समय किया था जब वो अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु के विषय में कह रहा था, यूहन्ना अध्याय 12:32, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाए जाने का ये उल्लेख है कि वो किस प्रकार की मृत्यु से मरेगा। वो क्रूस पर ऊंचा उठाया जाएगा और मैं यदि ऊंचा उठाया गया। यहां पर ऊंचा उठाए जाने का अभिप्राय है क्रूस पर ऊंचा उठाया जाना। मैं सब मनुष्यों को अपने पास खींचूंगा। धर्मशास्त्र के इस अंश की व्याख्या अनेक लोगों ने बड़ी लापरवाही से की है कि यीशु को ऊंचा उठाया गया था। यदि आप यीशु को ऊपर उठा देंगे तो स्वाभाविक है कि मनुष्य का ध्यान उस ओर जाएगा। अतः अपनी सेवकाई में यीशु को ऊपर उठा दो। वे गाना भी गाते हैं, हम उसे ऊंचा उठाएं, हम उसे ऊंचा उठाएं कि पूरी दुनिया देखें। जिस किसी ने भी ये गाना लिखा वो धर्मशास्त्र को समझ नहीं पाया था। इसका कारण स्पष्ट है कि उन्होंने उसको उसके संदर्भ से अलग कर दिया। यूहन्ना ने स्पष्ट लिखा है, यूहन्ना 12:33, ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा, अर्थात क्रूस पर ऊंचा उठाया जाएगा। यहां क्रूस की भविष्यवाणी है, वो ऊंचा महान वरन अति महान हो जाएगा। यशाया 52:14, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। इब्रानी भाषा में ये इस प्रकार लिखा है, उसका चेहरा ऐसा बिगड़ गया था कि वो मनुष्य का सा दिखता ही नहीं था। सुसमाचार वृत्तांत में विवरण है कि उसका चेहरा ढांप कर उन्होंने उसे मारा। स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में एक अविवेचित स्वनियंत्रित प्रतिक्रिया होती है कि यदि हम पर प्रहार होता दिख जाए तो हमारा शरीर उसे निष्प्रभाव करने का स्वाभाविक प्रयास करता है और प्रहार का पूरा आघात नहीं पहुंच पाता है। परंतु यदि प्रहार आकस्मिक हो तो हमें आघात पहुंचता है। जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं ये जानते होंगे कि यदि क्वार्टरबैक की खिलाड़ी सचेत ना रहें तो वो समस्या में पड़ सकता है, उसे वार के साथ साथ चलना होता है। आप उसके साथ उछल पड़ते हैं, परंतु क्योंकि आप उसके साथ प्रतिक्रिया करते हुए मांसपेशियों को संयोजित कर रहे हैं, अतः आपकी दशा बुरी नहीं होती है। यदि आप किसी प्रहार को अपने ऊपर आता देख पाने से चूक जाते हैं तो आपकी हड्डियां टूटने की संभावना हो जाती है और आपको खेल से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे आक्रामक खेल आपको क्षति पहुंचाते हैं। चूंकि यीशु की आंखें ढकी हुई थी, उसके शरीर में प्रतिक्रिया की संभावना ही नहीं थी, इस कारण उसका चेहरा विकृत हो गया था। यशया कहता है उसका रूप ऐसा बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। यशाया 52:15। वैसे ही वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। यशाया 53:1-2, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का बुझ बल किस पे प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यीशु के विषय में ये भविष्यवाणियां बड़ी विचित्र है कि उसका रूप अच्छा नहीं था, ना ही उसमें कोई सुंदरता थी। कहने का अर्थ यह है कि उसका संसारिक रूप आकर्षक नहीं था। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम मनुष्य के रूप की कल्पना करते हैं और ना देखने पर भी उसका रूप निर्धारण कर लेते हैं। मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है जब मैं उन क्षेत्रों का भ्रमण करता हूं जहां लोग हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं। मैं उपदेश देने के लिए उन क्षेत्रों में जाता हूं जहां के लोग मुझे रेडियो पर सुन चुके हैं, तो मेरे लिए उनकी अचंभित कर देने वाली मुद्रा को देखना अति रोचक अनुभव होता है, क्योंकि उनकी कल्पना में मेरा रूप एकदम अलग होता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम मनुष्य का एक काल्पनिक रूप मन में बसा लेते हैं। ये एक काल्पनिक छवि होती है, परंतु किसी व्यक्ति की छवि की कल्पना करना मनुष्य का स्वभाव होता है। जब डॉक्टर मैगी से पहले बार मेरी भेंट हुई तो मैं अचंभित हो गया, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी दक्षिणी भाषा शैली को धारण करते हुए वे ऐसे दिखेंगे। मैंने उनकी कल्पना एक लंबे टेक्सस वासी के रूप में की थी। उनका व्यक्तित्व मेरे लिए अचंभे का कारण हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे भी मुझको देखकर हैरान हुए होंगे। तो मैं कह रहा था कि इसी प्रकार यीशु के बारे में भी हमने एक काल्पनिक छवि बना रखी है कि वो कैसा रूपवान मनुष्य होगा, परंतु जितनों ने उसे देखा वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनकी कल्पना के आधार पर उसमें वो सुंदरता और आकर्षण नहीं था। उसमें तो ऐसा रूप ही नहीं था कि कोई उसे चाहता। उसका सौंदर्य मनुष्य के आकर्षण का कारण नहीं था, और मैं ये सोचता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये उसका रूप नहीं है जो मनुष्य को आकर्षित करे, क्योंकि अधिकांश जनों का चेहरा रूपवान नहीं होता है। वास्तव में सुंदर लोग तो बहुत कम होते हैं। हम में से अधिकांश लोग इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि यह हमारा रूप नहीं है जो मनुष्यों को आकर्षित करता है। अब यदि हम उन रूपवान या सुंदर मनुष्यों में होते तो मसीह के साथ पहचान बनने में हमें कठिनाई होती, परंतु सच्चाई तो यह है कि ये उसका रूप नहीं है जो हमें आकर्षित करता है, अर्थात कि हम उसके साथ पहचान बनाते हैं जो हमें आकर्षित करता है और हम रूप की चिंता नहीं करते हैं। जब यूहन्ना स्वर्ग में था तब उसने सिंहासन पर विराजमान के हाथ में पुस्तक देखी और स्वर्ग दूत को ऊंचे स्वर से पुकारते सुना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 2 से 6। इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है? और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई नहीं मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसका रूप ऐसा नहीं था कि हम उसको चाहते। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को जब पहली बार स्वर्ग में देखा तब वो ऐसा दिखता था कि मानो वध किया हुआ मेमना खड़ा है। अतः हम यीशु की कल्पना एक अत्यधिक बड़ा शरीर और शक्तिशाली पुरुष और एक रूपवान व्यक्ति के रूप में ना करें, क्योंकि अति संभव है कि आपके उन कष्टों के निशान उसके चेहरे पर हो जो उसने आपके स्थान पर उठाए थे। पुनरुत्थान के बाद भी उस पर वे निशान थे, क्योंकि थोमा ने कहा था, यूहन्ना अध्याय 20 पद 25, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। अतः जब यीशु फिर से उन पर प्रकट हुआ तब उसने कहा, ठीक है थोमा, अपनी उंगली मेरे हाथों में और अपने हाथ मेरी पसली में डालकर देख, अर्थात उसकी देह पर निशान थे। जकरिया 12:10 में लिखा है, तब वे तुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। ये भविष्य की घटना है कि वो आपके प्रति अपने प्रेम के निशान लिए होगा। अतः वो जिन्होंने उसे देखा अचंभित थे, ना तो कुछ सुंदरता थी, ये वास्तव में एक लुभावना आकर्षक या मन भावन रूप नहीं था, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यशाया 53:3, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। आपने अपने मन में पौलुस के रूप की भी कल्पना की होगी। मैं पौलुस के पत्री को पढ़ता हूं कि वो एक असाधारण व्यक्ति होगा, निश्चय ही वो एक आत्मिक व्यक्ति था। मैंने अपोक्रिफा की एक पुस्तक के आरंभिक लेख में पौलुस के व्यक्तित्व के विषय में पढ़ा था। वहां पौलुस का वर्णन इस प्रकार है कि वो एक दुबला पतला छोटा सा नाटा आदमी था। उसका कद 5 फुट और उसकी नाक कंटिया जैसी थी, आंखें लाल और सूजी हुई थी, उससे पानी बहता रहता था। ये तो बड़ा भयंकर वर्णन था। मैं इस बात से रुष्ट था क्योंकि मेरी कल्पना में पौलुस की मुखाकृति ऐसी नहीं थी। मैं तो पौलुस से बहुत प्रेम रखता हूं। इस मनुष्य ने उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर पौलुस की कैसी छवि प्रस्तुत की है, और मैं पौलुस के पत्री को पढ़कर उसका कितना निकट आ गया हूं। मैं तो उसे उनमें से एक मानता हूं जिसके साथ मैं भविष्य में कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूं। किसी का भौतिक रूप ना देकर उससे प्रेम करने लगना और भौतिक रूप से उसकी ओर आकर्षित ना होना। परंतु आज हम इसके उपरांत भी प्रेम को शारीरिक आकर्षण से युक्त करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति से। ये एक त्रासदी है। यही कारण है कि कितने विवाहित जोड़े आज निराशा की स्थिति में हैं, क्योंकि विवाह चेहरा देखकर किया गया और चेहरे के पीछे कुछ नहीं पाया गया। चरित्र की गहराई नहीं थी, केवल चेहरा ही था और बस वही। मेरे जीवन में सबसे निराशाजनक मुलाकात का समय जो मैंने बिताया वो एक रूपवती लड़की के साथ था। मैं बड़ा प्रफुल्लित था। मैंने सोचा ये तो बड़ा ही अच्छा होगा। मेरी बहन उसकी बहन के साथ काम करती थी और उनकी बातों का विषय मेरा भाई। ओह, मेरी बहन सोचती है तुम्हारा भाई बड़ा प्यारा सा है आदि। मुझे और क्या चाहिए था, अतः फोन करके मिलने के समय निश्चित करना था। बड़ी निराशाजनक रात थी वो। उसका चेहरा बड़ा सुंदर था, परंतु वो बिल्कुल बेकार लड़की थी। मेरे कहने का अर्थ है कि वो संध्या व्यर्थ गई, कोई बातचीत ना हो पाई। कहने का अर्थ यह है कि लोग संबंध स्थापित करने में कैसी चूक कर जाते हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव की अपेक्षा उसके रूप को देखते हैं। अतः उसे मनुष्यों ने तुच्छ जाना और त्यागा। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। यशाया 53:3, और लोग उसे मुख फेर लेते थे। संभव है कि उन्हें देखकर दुख पहुंचता हो या उसे देख वे डर जाते हो। क्या आपने कभी ऐसी कोई वस्तु देखी है जो ऐसी भयानक दिखती हो कि आप उसे देख भी ना पाए। हो सकता है कि जब आप अपने कारण उसके द्वारा उठाए गए कष्टों के निशान उस पर देखें, तो आपकी प्रतिक्रिया भी वही होगी कि आप उसे देखते ही उसे देखना ना चाहेंगे, क्योंकि वो तो मनुष्य का सा दिखता नहीं और आप एकदम से एक और हो जाएंगे। यशाया अध्याय 53:3। वो तुच्छ जाना गया, उसका त्याग कर दिया गया था। यशाया अध्याय 53:3। और हमने उसका मूल्य ना जाना, परंतु उन कष्टों और उस मृत्यु में। यशाया अध्याय 53:4-5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यही वो कारण है कि यहूदियों को मसीह यीशु की मृत्यु का उत्तरदायी तथा दोषी माना जाता है, और कलीसिया के इतिहास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के लिए उन्हें सताना मात्र मूर्खता है। ये बिल्कुल धर्मशास्त्र विरोधी जड़ बुद्धि है। वे आपसे और मुझसे अधिक मसीह की मृत्यु के उत्तरदायी नहीं है। हम सब उसकी मृत्यु के लिए बराबर के उत्तरदायी है, क्योंकि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया था। वो मेरा पाप था जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाया। ये मेरा पाप था जिसके कारण उसे कष्ट, ताड़ना, लज्जा और निंदा मिली। दोषी तो मैं हूं, और मुझे अपने अपराध के लिए किसी और को दोष देना तथा उन बातों के लिए किसी को सताना जो हमने स्वयं की है उचित नहीं है। निश्चय ही उसने हमारे दुखों को उठाया तथा हमारे कष्टों को सहन किया। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यशाया अध्याय 53:5। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। अतः प्रभु यीशु मसीह के कष्टों और मृत्यु के उत्तरदायी हम ही है। उसने मेरे लिए कष्ट उठाए और वो मारा गया कि मेरे पापों की मुझे क्षमा प्राप्त हो, कि वो मुझे परमेश्वर की संगति में ले आए। मनुष्य की सृष्टि करने में परमेश्वर का यही उद्देश्य था कि परमेश्वर मनुष्य के साथ सहभागिता करे, परंतु जब मनुष्य ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और पाप किया, तब परमेश्वर के साथ सहभागिता टूट गई। अब पवित्र और धर्मी परमेश्वर के साथ सहभागिता को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता था जब तक कि पाप का निवारण न किया जाए। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह आया कि वो मेरे पापों का दोष उठा ले, कि वो मेरे अपराधों को उठा ले, मेरे अपराधों और मेरे दोषों को लेकर मेरे स्थान पर मर जाए, जिससे कि उसकी मृत्यु के द्वारा मैं अब परमेश्वर के पास आ सकता हूं और परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकता हूं। यशाया अध्याय 53:6। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। क्या आपको क्रूस पर चढ़े मसीह यीशु के शब्द स्मरण आते हैं? हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो भजन संहिता 22 को पुकार रहा है, और 3 में उसका उत्तर है, परंतु हे तू जो इसराइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। परमेश्वर के पुत्र पर जब आपका पाप रख दिया गया था, तब परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। पाप का प्रभाव ऐसा ही होता है कि मनुष्य परमेश्वर द्वारा त्याग दिया जाता है, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। जब आपके पाप मसीह यीशु पर डाल दिए गए थे तब वो भी पिता से अलग हो गया था, इसलिए उसने पुकारा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसका त्याग कर दिया था कि परमेश्वर आपका त्याग ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशाया 53 अध्याय पद 7। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। आपको ध्यान होगा कि पिलातुस आश्चर्यचकित था कि यीशु अपने पक्ष में कुछ नहीं कह रहा था। उसने कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने कहा, यदि मेरे पिता की ओर से तुझे नहीं दिया गया होता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार नहीं होता, परंतु कोई बात नहीं, जिन्होंने मुझे पकड़वाया उनका पाप तुम्हारे पाप से बहुत अधिक है। पिलातुस, मैं जानता हूं तुम बड़ी दुविधा में हो। वो नहीं जानता था कि उसके हाथ में क्या है, परंतु उसने पूरी कोशिश की कि यीशु को छोड़ दिया जाए, परंतु उसने अपना मुंह ना खोला। यशाया अध्याय 53 पद 7। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। समस्त दोषारोपण, क्या तू सुनता नहीं कि वे तुझ पर क्या दोष लगाते हैं? तू क्या कहता है? यीशु ने कुछ नहीं कहा। यशाया अध्याय 53 पद 8। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? ये बड़ा ही दिलचस्प गदांश है, जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। क्या आपको दानियल की भविष्यवाणियां स्मरण आती है? दानियल अध्याय 9 पद 25 और 26। सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाला प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजाड़ जाना निश्चय ठाना गया है। क्योंकि वो काटा गया, वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो जीवतों के बीच से उठा लिया गया। परमेश्वर पुकारता है। यशाया अध्याय 53 पद 8 और 9। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। आपको याद होगा कि लिखा है, अर्मेतिया का यूसुफ एक धनी व्यक्ति था जिसने पिलातुस से याचना की थी कि यीशु की लोथ उसे दफन के लिए दे दी जाए। कहने का अर्थ यही है कि मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यशाया अध्याय 53 पद 9 और 10। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया जब तू उसका प्राण दोष बलि करे। अतः मसीह हमारे लिए दोष बलि बन गया। ये परमेश्वर की इच्छा थी क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। यशाया अध्याय 53 पद 10 और 11। तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। उसने कष्ट सहे कि आपका नया जन्म हो, ताकि वो आपकी मुक्ति को देखें, वो आपको परमेश्वर की संगति में देखें। वो तृप्त हो जाएगा, वो देखकर कहेगा कि ये व्यर्थ ना हुआ, क्योंकि उसने हमें मुक्ति प्रदान की। अतः वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। यशाया अध्याय 53 पद 11। अपने ज्ञान के द्वारा, यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा, यशाया अध्याय 53 पद 11। मेरा धर्मी दास बहुत तेरों को धर्मी ठहराएगा। आज हम में से कितने हैं जो मसीह यीशु को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर के धर्मी ठहराए गए हैं? अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरों को धर्मी ठहराएगा। यशाया अध्याय 53 पद 11। और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये भविष्यवाणी यीशु के जन्म से 700 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। इस कारण पेंतिकोस्त के दिन जब पत्रस ने खड़े होकर उन मनुष्यों को संबोधित किया था जो यीशु के क्रूस की मृत्यु के सहभागी थे, उसने उनसे कहा, प्रेरितों के काम अध्याय 2:22-23 पर, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु जब वो उसकी क्रूस की मृत्यु के विषय में कहता है, तब वो परमेश्वर के पूर्व निर्धारित समिति और संकल्प के विषय कहता है कि परमेश्वर जानता था कि होना यही है। परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि आपको समझ में आ जाए कि वो आपसे कितना प्रेम रखता है। पहला योहन्ना अध्याय 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर उसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पौलुस ने कहा, रोमियो अध्याय 5:7-8, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने को भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसने हमारे अपराध उठाए, उसने हमारे पापों को उठा लिया। यशाया अध्याय 53:12। पिता कहता है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। रोमियो अध्याय 8:16-17। हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। वो सामर्थ्यवानों के संग लूट बांटता है। यशाया अध्याय 53 पद 12, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वो अपराधियों के संग गिना गया, उसके दोनों ओर एक एक अपराधी था, इसलिए वो अपराधियों के साथ गिना गया। यशाया अध्याय 53 पद 12, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आपको ध्यान होगा कि जब उसके हाथ पैरों में कीले ठोकी जा रही थी, तब उसने क्या प्रार्थना की थी? लूका अध्याय 23 पद 34, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। वो सब अपराधियों के लिए प्रार्थना कर रहा था। ये सब बातें पहले से ही कही जा चुकी थी। यीशु की मृत्यु द्वारा इन सब की पूर्ति हुई। निश्चय ही ये सब बातें उस एकमात्र को ही इतिहास में मसीहा सिद्ध करती है, जो कष्ट सहने वाला सेवक था। यदि यीशु मसीहा नहीं है तो कोई और मसीहा है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के उन 300 कथनों को पूरा किया है, जो उसके जीवन, उसकी सेवकाई और उसकी मृत्यु के विषय में कहे गए थे। यहां यशया की पुस्तक में उसके विषय भविष्यवाणी का स्पष्ट और विशिष्ट उदाहरण है। यदि ये बातें प्रभु यीशु मसीह से संबंधित नहीं है तो इतिहास में ये अन्य किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होती है। वही एकमात्र है जिसने इन सब भविष्यवाणियों को पूरा किया। इस कारण इन प्रमाणों के रहते उसका इनकार करना स्वयं के विवेक के विरुद्ध पाप करना है, सत्य के विरुद्ध पाप करना है, जो और भी बड़ी दुष्टता है।